بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیات منطق میں جو انہوں نے پہلا درس آپ کی چھوٹی کتاب میں پہلا درس تو میرے خیال میں وہ مقدمے میں ہوگا نا, یہ
پہلا درس وہ ہے
ہاں وہ مقدمے میں ہے, وہ مرتبط نہیں ہے وہ, چونکہ انہوں نے علوم اسلامی کسے کہتے ہیں اس کے
جی.
ساتھ ہی ہے, منطق کے ساتھ مرتبط نہیں ہے. دوسرے درس سے مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. پہلا مطلب بھی شہید متحری اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں وہ تاریخ علم منطق ہے, کہ منطق جو ہے کیسے وجود میں آئی ہے. اس میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ علم منطق یونانی متن سے ترجمہ شدہ ہے, اور اس کا واضح اور مدون جو ہے وہ ارسطو ہے. پھر اس کو عربی میں ارسطاطالیس کہتے ہیں, کہ جو انہوں نے عربی تلفظ لکھا ہوا ہے یہاں پر ارسطو ہے. اور انگلش میں میرے خیال میں اس کا تلفظ ارسطو شاید نہ ہو, کوئی اور تلفظ شاید ہے اس کا. یہاں پر اب ایک بحث یہاں پر یہی ہے, منطق مظفر میں بھی تھوڑا سا تذکر وہاں پہ دیا ہے, وہ یہ کہ تاریخ علم منطق میں جب بحث ہوتی ہے تو یہاں جب پوچھا جاتا ہے کہ علم منطق کو وضع کس نے کیا, تدوین کس نے کیا, وجود میں کون لایا, تو نام ارسطو کا آتا ہے. لیکن یہاں پہ بزرگان تھوڑا تفکیک کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر انسان عقل سلیم رکھتا ہے اور عقل سلیم ہر انسان کے اندر موجود ہے, اور یہ عقل سلیم تقریباً یوں کہہ لیں اس کا اصطلاحی نام اگر دینا چاہیں منطق والا تو وہ قواعد منطقیہ ہیں, یعنی کیونکہ عقل سلیم کے ذریعے انسان فکر کرتا ہے اور منطق بھی قواعد فکر سکھاتی ہے جیسا کہ تعریف کریں گے ابھی بعد میں. تو منطق کو پھر دو نام دیے ہیں, ایک منطق تکوینی ہے اور ایک منطق تدوینی ہے. منطق تکوینی اس منطق کہتے ہیں کہ انسان جس کو فطرتاً استعمال کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان جو بھی فعل انجام دیتا ہے حتماً وہ منطق کے قاعدوں سے استفادہ کرتا ہے, ورنہ انسان وہ فعل انجام ہی نہ دے پاتا. مثلا جیسے مثال لے لیتے ہیں اس میں آ کے کہ آپ اگر پیاسے ہیں اور پانی پیتے ہیں تو آپ خانہ خواہ قیاس سے استفادہ کر رہے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ جب کہتے ہیں کہ جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ حتمن حرکت کرے, بس پیاسے کو کیا کرنا چاہیے, حرکت کرنی چاہیے. مثلا اس طریقے سے پھر آپ اٹھتے ہیں اور پانی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ اپنے ہر فعل کو جب تحلیل کرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ واقعاً آپ کسی نہ کسی ایک قاعدے سے استفادہ کر رہے ہیں. مثلا قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن کی ہر آیت کا استدلال کسی نہ کسی منطقی قاعدے کے قالب میں آ رہا ہوگا. مثلا آپ دیکھ لیں کہ لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا. مثلا اس کو اگر آپ باب قیاس کے اندر جا کر دیکھنا چاہیں کہ یہ استدلال کون سے کس قالب کے ساتھ مرتبط ہے, کس قسم کے قیاس کے ساتھ مرتبط ہے, تو آپ دیکھیں گے قیاس استثنائی ہے. درست ہے, قیاس استثنائی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مثلا وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو نظام فاسد ہو جاتا, لیکن نظام فاسد نہیں ہے بس خدا ایک ہے, متعدد خدا نہیں ہے, یہ قیاس استثنائی ہے. اسی طریقے سے آپ پورا قرآن روایات کے اندر تحلیل کر کے دیکھیں, آئمہ نے جو مناظرے کیے ہیں احتجاجات تبرسی, اس کو اگر آپ جا کر دیکھتے ہیں ان میں مناظروں کو تحلیل کرنا شروع کر دیں, آپ کو منطق کے قواعد نظر آئیں گے. حتیٰ پائنامے لکھے جا چکے ہیں, تھیسس لکھے جا چکے ہیں آئمہ کے ان مناظرات میں کس طریقے سے قواعد علم منطق استفادہ ہو رہے ہیں. تو لہذا چونکہ انسان عقل سلیم رکھتا ہے اور فکر کرتا ہے, خانہ خواہ اس نے استدلال کرنا ہے, فکر کرنا ہے, اور وہ قواعد سے استفادہ کرنا ہے اس نے. لہذا اگر علم منطق کے بارے میں پوچھا جائے کہ منطق کی تاریخ کیا ہے, تو یہ تفکیک کرنا پڑے گی کہ کس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں, منطق تکوینی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یا منطق تدوینی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. منطق تکوینی وہی جس طرح عقل سلیم ہے اور انسان کے اندر موجود ہے, تو یہ تو بشر کے ساتھ موجود ہے, اس کے بارے میں تو آپ تاریخ معین نہیں کر سکتے کہ منطق کب تدوین ہوئی یا کب جو ہے وہ وجود میں آئی. جب سے انسان ہے منطق موجود ہے, کیونکہ وہ استدلال کر رہا ہے, الفاظ اس میں استعمال کرتے ہیں. لہذا منطق تکوینی کے اعتبار سے آپ تاریخ معین نہیں کر سکتے. ہاں بات یہاں پر آتی ہے کہ یہ جب کتابی شکل میں کب آئی, یہ آپ سوال کا حق رکھتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کتابی شکل میں آنا علم منطق کا, اس کو کہتے ہیں کہ یہ منطق تدوینی ہے. تدوین یعنی وہی لکھنے کے معنی میں ہے. اس کے بارے میں پھر جو علماء تاریخ ہیں وہ متفق ہیں اس بات میں کہ سب سے پہلے جس نے منظم طور پر اور تمام منطقی قواعد کو کتاب میں لے کر آیا وہ ارسطو ہے.
تو یہ تکوینی اور تدوینی کی یہ جو تقسیم بندی آپ نے کی ہے, شہید نے ذکر کیا؟
شہید نے ذکر نہیں کی. شہید نے چونکہ یہاں پہ تذکر دیا ہے اس یہاں پہ علم منطق از متون یونانی ترجمہ شدہ واضح و مدون این علم ارسطاطلیس یونانی از, واضح و مدون اس کا ارسطو ہے یہاں پر. تو اس میں پھر آپ دوسری کتابوں میں جب رجوع کریں گے تو یہ تحقیق کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گی. تو ضروری ہے کہ یہ جان لے کہ منطق جو ہے دو نگاہ سے دیکھی جا سکتی ہے تاریخ کے اعتبار سے. لہذا یہاں جو شہید مطہری ذکر کر رہے ہیں کہ علم منطق کا جو مدون ہے وہ ارسطو ہے, وہ منطق تدوینی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. وائلہ اگر شہید مطہری سے پوچھا جاتا کہ انسان فکر کب سے کر رہا ہے یا مثلا منطق قواعد کو استعمال کب سے کر رہا ہے, تو حتماً یہ جواب دیتے کہ انسان جب سے ہے منطق قواعد سے استفادہ کر رہا ہے. تو لہذا یہ مطلب یہاں پر ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. پھر جب یہ مامون کے دور میں جب ترجمے کا بازار گرم ہوا اور مامون نے ترجمہ کروانا شروع کیا مختلف علوم کا یونانی, تو ان میں سے ایک علم جو ترجمہ ہوا منطق کا وہ منطق کا ترجمہ تھا. اور سب سے پہلے جس نے یونانی زبان سے عربی میں اس کو ترجمہ کیا ہے اس کا نام حنین ابن اسحاق ہے. حنین ابن اسحاق کے ترجمے کے بارے میں شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یہ جو بندے یونانی ترجمے سے زبان سے آگاہ ہیں اور عربی سے بھی آگاہ ہیں, دونوں زبانیں جن کو آتی ہیں, انہوں نے جب مقایسہ کیا کہ علم منطق کی جو ترجمے کیے گئے ہیں مختلف اس میں دیکھیں کہ بہتر کس کا ہے, تو اس میں کہتے ہیں محققین یہ کہتے ہیں حنین ابن اسحاق کا ترجمہ دقیق تر ہے اور یہ آج کل ملتا بھی ہے یعنی بازار میں چھپا ہوا ہے. اور حنین ابن اسحاق جو ہے وہ بہت ہی پرانے یعنی آئمہ کے قریب کے زمانے کے موجود ہے, اس میں اس نے کام کیا تھا. اور یہ ایک اتمن جو ہے میرے خیال میں شاید آغا شیروانی نے بھی اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہو, انہوں نے شیر مطہری نے یہاں پہ اشارہ نہیں کیا, وہ یہ کہ منطق کو ارسطو نے تدوین کیوں کیا, کیا ضرورت پیش آئی جب انسان تکوینی طور پہ منطق سے استفادہ کر رہا ہے جیسے مثالیں دی ہیں آپ کو, اور اسی طریقے سے ہر انسان جب فکر کرتا ہے اور منطق جب نہیں تھی تب بھی وہ فکر کر رہا تھا اور صحیح نتائج پر پہنچ بھی رہا تھا, تو پھر کیا ضرورت پڑی اس کو ارسطو کو آ کے اس کو کتابی شکل میں دیں اور پھر اس کو جو ہے وہ رسماً تدریساً پڑھا جائے اور پھر اس کے اوپر کام کیا جائے. ضرورت نہیں ہے, ضرورت تو اس چیز کی ہوتی ہے جو ہمارے اندر نہ ہو پھر ہم نے اس کا حاصل کرنا ہو. لیکن خود اعتراف کرتے ہیں علماء منطق کہ منطق انسان کی فطرت میں شامل ہے تو کیوں اس کو تدوین کیا. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سقراط و افلاطون کے زمانے میں ایک گروہ وجود میں آیا تھا جن کو سوفسطائی کہتے ہیں. اس کو میں نے بدایا اور کے درس میں تفصیل سے ذکر کیا سوفسطائی کسے کہتے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ سوفسطائی آج کل کے وکیل کو آپ ذہن میں رکھیں وہ اس قسم کے بندے تھے. لوگ اپنی مشکلات کو حل کرانے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے. سوفسطائی کہتے ہیں جو دانش مند تھا, سوفسطائی دانش مند کو کہتے تھے. یہ مشکلات کرتے تھے لوگوں کی حل, مثلا عدالت میں اگر کیس کرنا تھا مطلب کسی نے زمین پہ قبضہ کر لیا کوئی مشکل پیش آ گئی تو یہ ان کے کیس کو لڑوا کرتے تھے. اب جب انہوں نے پیسے لے کر کام کرنا شروع کیا اور پھر پیسے لینے کے لیے جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو اب اگر جھوٹا انسان آتا تو اس کا بھی کیس جیت جاتے تھے, سچا انسان آتا اس کا بھی کیس جیت جاتے تھے. چونکہ مفکر انسان تھے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ یہ سوچنا شروع کر دیا کہ واقعیت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں, کیونکہ اگر واقعیت نام کی کوئی چیز ہوتی تو سچ جھوٹ کیسے بن رہا ہے, پھر جھوٹ کے سچ کیسے بن رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ये जो झूठ को हम सच बना रहे हैं, सच को झूठ बना रहे हैं, इसका मतलब वो वाकियत नाम की कोई चीज नहीं है। वाकियत वही है जो हम सोचते हैं। आयतुल्लाह मिसबाह ने भी इसको अमूजी फलसफा के अंदर जिक्र किया है एक लतीफे के साथ इस मतलब को। लतीफा उन्होंने ये जिक्र किया कि शख्स जो है उसने झूठ बोला, गली में खड़ा हुआ था, लोगों को कहता है कि आप फलाने नंबर गली में जाओ, वहां पर जो है ना शीरीनी तकसीम हो रही है, हलवा तकसीम हो रहा है। तो लोग जो शौकीन थे, मसलन आप शिया मिसाल लेना चाहें, मसलन अगर मिसबाह के लतीफे को छोड़े अपनी शिया मिसाल अगर लेना चाहें, तकबीक हो जाएगी। कोई वहां जाकर के फलाने घर में जो है न्याज में लग गया, तो न्याज के शौकीन जो है वो जाते हैं फौरन, उन्होंने बर्तन उठाए, उस घर के आगे लाइन लगा ली। तो देखते ही देखते लोगों ने देखा कि यहां कोई ना कोई चीज मिल रही है, जैसे तबन देखा जाता है जब एक लाइन लगी होती है, इंसान देखता है कि न्याज मिल रही है, वो अगला बंदा लाइन में लग जाता है, लाइन लंबी हो जाती है। तो अगमसमा लिखते हैं कि वो देखते देखते लाइन इतनी लंबी हो गई कि जिसने झूठ बोला था ना, उसने भी सोचना शुरू कर दिया कि शायद यहां पे कुछ चीज मिल रही हो, तो वो भी लाइन में कटोरा उठा के जो है वो खड़ा हो गया वहां पर। तो कह रहे हैं सूफिस्थानियों के साथ कुछ ऐसा होगा कि इन्होंने पहले पैसे की खातिर झूठ को सच, सच को झूठ बनाना शुरू किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद शक में पड़ गए कि वाकईयत नाम की कोई चीज है भी या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरोह वजूद में आएंगे, बाद ऐसे गिरोह वजूद में आए कि जो कुल्लन वाकईयत का इनकार कर दिया उन्होंने। वो कहने लगे कि असलन इंसान ख्वाब है, ख्वाब देख रहा है, वाइला वाकईयत नाम की कोई चीज नहीं है। इंसान जैसे ख्वाब देख रहा होता है, मुख्तलिफ चीजें देख रहा होता है, जैसे आंख खुलती है को देखता है, कोई वाकईयत नहीं थी, जो कुछ था मैं अपने ख्वाब में देख रहा था। कहते इंसान ख्वाब में, जब इंसान बेदार होगा तो देखेगा कि जो कुछ भी उसने देखा वो कुछ भी नहीं था, बिदून वाकईयत था। एक ग्रोह ऐसा आया, एक ग्रोह उनमें से निकला कि जो कहता है ना ये तो बहुत ही गलत नजरिया है कि आप कहेंगे वाकईयत नाम की कोई चीज नहीं, सारे इंसान ख्वाब में है, ना वाकईयत है, लेकिन वाकईयत वही है कि जो मैं हूं, मेरे अलावा कोई वाकईयत नहीं है, यानी मैं वाकईयत हूं। अब आप और मैं, आपके अलावा जितनी भी अशिया यहां मौजूद हैं वो वाकईयत नहीं है, मैं फकत वाकईयत हूं। ये एक जिसे आप यूं कह लेंगे ह्यूमनिज्म की तरफ भी इशारा है, यहीं से निकला है भारत। तीसरा नजरिया फिर इनमें से यह निकला कि ना मैं भी वाकईयत रखता हूं, आप भी वाकईयत रखते हैं, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए मेरे पास कोई वसीला नहीं है, मैं खारिज के बारे में मालूमात हासिल कर ही नहीं सकता, मेरी तवान नहीं है।
यानी आप और मैं वाकईयत है,
वाकईयत है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सकता, यानी मैं इस वक्त आपको देख रहा हूं, लेकिन आया वाकई आप इसी तरीके से हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूं, या ना वाकई में आप कुछ हो रहे हैं लेकिन मुझे नजर कुछ और आ रहे हैं। क्या नहीं, मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ा शुबहा है कि जो अभी तक हल कर रहे हैं मुफक्किरीन इसको। मतलब मैं आपकी शर्ट के रंग को सुर्ख देख रहा हूं, आया ये सुर्खी जो नजर आ रही है मुझे मेरे जहन के इनफ़ालात का नतीजा है या वाकई ये सुर्ख है खारिज में? यकीन हम कह सकते हैं कि खारिज में ऐसे ही है, मुमकिन है किसी के जहन का साख्तार कुछ और हो, उसके जहन की जो पैदाइश है वो कुछ और हो, वो इसको किसी और तरीके से देखे। जैसे कि मुशाहदात में मिलता है कि बाज जानवर रंगों को किसी और सूरत में देखते हैं, और बाज जानवर ऐसे हैं कि जो असल रंग देखते ही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट उनको नजर आता है सारा। बहरहाल ये एक शुबहा ऐसा के मुफक्किरीन ने हल किया है,
लेकिन यूं तो कह सकते हैं कि इंसान के दुरून को जो है वो कोई भी दकीक नहीं देख सकता। मतलब आपके मतलब इंसान से मुराद इंसान की रूह है, तो आप क्या सोच रहे हैं अंदर से, वो क्या
ना, वो, से हाँ, अभी ये जो सूफिस्तानी है ना, ये वो मादी गिरात है, वो फकत जाहिरी बातों से सारोकार रख रहे थे। जैसे मिसाल दिया आपको कि मैं आपको देख रहा हूं, वाकईयत भी मान रहा हूं, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं आप वाकईयन वैसे ही हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई दलील नहीं। ये आकर तशकीकें इस किस्म के शक का इजाद करना शुरू कर, इनको कहते हैं सूफिस्ताई, इनके मुख्तलिफ गिरोह आए हैं। इन्होंने जब मुगालतात करना शुरू कर दिया तो सुकरात और अफलातून ने फिर इनका मुकाबला किया, दोनों उस्ताद शागिर्द थे, इन्होंने मुकाबला शुरू किया, लेकिन इनका मुकाबला जो था वो जबानी था, यानी मुनाजरे करते थे इनके साथ, लोगों के शऊर को बुलंद करते थे, उनसे बहसें करते थे, उनको कवायद सिखाते थे, ऐसी मजलिस में बैठ जाना जैसे हमारी मजलिसें होती हैं, ऐसे बिठा लेना, उनको कवायद सिखाना कि बचो इनसे, ये मुगालता कर रहे हैं, वो मुगालता कर रहे हैं। इस तरह काम करते थे। लेकिन अरस्तु ने आकर जो अफलातून का शागिर्द था उसने कहा कि ये तो काफी नहीं है कि जबानी तौर पर उनको सिखाई और काम करें, कवायद को मुदवन कर दिया जाए, किताबी सूरत में ला दिया जाए और हर एक बंदे के इख्तियार में दे दें, वो पढ़े मुतालआ करे, तदरीसन पढ़े, माहिर बने उसके अंदर, फिर इनका मुकाबला खुद करे जाकर। उसने फिर क्या किया, मंतिक को तदवीन किया वहां, कवायद इल्म मंतिक को। ये सबब बना के अरस्तु ने मंतिक तकवीनी को मंतिक तदवीनी में बदला था। वो कवायद मंतिक के इसने यूनानी जबान में लिखे और फिर ये राइज हो गए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में यूनान के अंदर पढ़ा जाने लगा इसको और इसका रवाज बहुत ज्यादा हो गया। फिर जब इस्लाम का जमाना आया और तर्जमे का जमाना आया तो मंतिक अरस्तुई जो है वो तर्जमा हुई और मुस्लिम दुनिया के अंदर भी इसने रवाज पकड़ लिया और पढ़ाओ और पढ़ाया जाने लगा। और जिस तरह का अर्ज कर दिया है कि हुनैन इब्ने साक़िर, अब इस वक्त हम जितनी मंतिक पढ़ते हैं चाहे वो किसी भी मुसन्निफ की हो वो मंतिक अरस्तुई कहलाती है। यानी हम जो कवायद पढ़ रहे हैं चाहे वो मंतिक मुजफ्फर की सूरत में हो, चाहे वो हाशिमुल अब्दुल्ला की सूरत में हो, चाहे वो शरह शमसिया की सूरत में हो, चाहे मंतिक की जो भी किताबें, मंतिक अरस्तु ही हैं। यानी अरस्तु के बयान शुदा कवायद हैं कि जिनको हम यहां पर बैठते हैं, बैठकर पढ़ते हैं और उसके जरिए फिर फिक्र करते हैं और अपनी फिक्र को खता से बचाते हैं इसमें आकर। लिहाजा इस मंतिक को मंतिक अरस्तु ही कहते हैं जो हम हौजाजात में पढ़ते हैं। ये चीज है, एक मतलब ये बयान किया शहीद मुतहरी ने, थोड़ा तफसील से इसके आपके खिदमत में आ गया। दूसरा मतलब जो यहां पर जिक्र करते हैं उसका जवाब नहीं देते, कहते हैं कि हम इसको बाद में जिक्र करेंगे, वो ये कि आपके खिदमत में भी अर्ज किया कि जो हम मंतिक पढ़ रहे हैं हौजाजात के अंदर, मदारिस के अंदर, इसको मंतिक अरस्तु ही कहते हैं। अब यहां पर यह सवाल दानिशमंदों और मुफक्किरीन के जहन में पैदा हुआ कि आया मंतिक अरस्तु के बयान करदा कवायद दुरुस्त भी हैं या दुरुस्त नहीं है, एक मतलब। दूसरा सवाल जो जहन में उठा वो ये कि मंतिक, हमने मंतिक में यकीन की मंजिल पर जाना है, बुरहान हमने हंगामा करना है, यकीन मंतकी चाहिए कि बुरहान में तफसीलन जो है वो अर्ज होगा और आपने पढ़ा भी है, बुरहान में इल्म मंतक चाहिए, मंतिक यकीन मंतकी चाहिए होता है। तो आया यकीन की मंजिल पर पहुंचने के लिए फकत अरस्तु के कवायद चाहिए या ना इसके अलावा भी राह तय किया जा सकता है। अरस्तु भी है लेकिन अरस्तु के हट के भी कुछ कवायद ऐसे हैं जो अरस्तु ने बयान नहीं किए, लेकिन और कवायद मौजूद हैं, मुमकिन हम उसके जरिए यकीन तक पहुंच जाएं। इस किस्म के एक दो सवाल ये मुफक्किरीन के जहन में पैदा हुए, उसका नतीजा ये निकला कि मंतिक अरस्तु के मुकाबले में मुख्तलिफ मंतिकें सामने आई। मसलन इस वक्त तकरीबन 3 या 4 मंतिक वजूद में आई हुई हैं कि जो मंतिक अरस्तु के मुकाबले में है। मसलन एक उसमें मंतिक फाजी है, तफसील इंशाल्लाह जब मंतिक अरस्तु में माहिर हो जाएंगे तो, और फलसफा गर्ब को आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो ये मंतिक इन चीजों को फिर सही तरीके से फहम कर पाएंगे।
अच्छा, ये मंतिक गर्ब में भी यही अरस्तु की पढ़ाई जाती है
सब जगह? नहीं, उसमें बाज आप अरस्तु भी पढ़ते हैं और ये दूसरी मंतिक भी पढ़ते हैं, इसी वजह से अर्ज कर रहा हूं कि ये मंतिक वजूद में आई अरस्तु के मुकाबले। मंतिक फाजी एक वजूद में आई, दूसरी मंतिक जो वजूद में आई मंतिक डायलेक्टिकी है जिसको हेगल ने आकर बयान किया और हेगल के बाद फिर जो है वह डिकार्ट वगैरह और ये चीजें हैं इसमें। तीसरी मंतिक जो वजूद के अंदर आई उसको कहते हैं मंतिक रियाजी, जिसको मंतिक जदीद के नाम से भी याद करते हैं और मंतिक अलामत का नाम भी देते हैं। उसमें रियाजी के फार्मूलों की तरह फार्मूलों में मंतिक बयान की गई है, जैसे रियाजी में फार्मूले होते हैं। अब यहां पर तो सारा इबारात में लिखा हुआ है कि कुल्लो इंसान इन हैवान मसलन इस तरीके से, वह कुल्लो हैवान इन मसलन मुतहर्रिक, यूं करके आप कहते हैं। वहां पर फार्मूले हैं, फार्मूलों
की
हाँ नतीजा सही आता है, लेकिन थोड़ा सा उसका इख्तलाफ है मंतिक अरस्तु के साथ। एक तो इख्तलाफ उसका फार्मूलों के अंदर है कि ये फार्मूलों में नहीं है, वो फार्मूलों में है, लेकिन मबानी में भी थोड़ा सा फर्क है कि तफसीलन जो है वो फिर बाद में, चूंकि वो फलसफा गर्व से थोड़ा आशना होना जरूरी है वो मतलब को समझने के लिए। पर मंतिक फाजी वजूद में आई, मंतिक डायलेक्टिकी जो है वो वजूद में आई, मंतिक रियाजी मंतिक जदीद जिसे कहते हैं ये वजूद के अंदर आई। इस वक्त जो मंतिक अरस्तु के मुकाबले में गर्ब के अंदर राइज है और मुतअद्दिद किताबें लिखी जा चुकी हैं गर्बियों की तरफ से, वो मंतिक रियाजी है।
मंतिक फाजी, मंतिक रियाजी,
मंतिक रियाजी
ये डीआईटी जो है ये हैकल ने लिखी
ये हेगल ने बयान किया, फिर उसके बाद
और ये
बाकी
फाजी।
मुफक्किर ने आया। फाजी को ईरानी मुफक्किर है, अब नाम जहन से निकल गया है, पुराना है बहुत, नाम जहन से निकल गया, मैं देख के आपको बताऊंगा। और ये मंतिक जदीद भी जो है वो इन रियाजीदानों ने ही वजूद में लेकर आए हैं। लिहाजा अब मंतिक अरस्तू का की मुखालफत मुख्तलिफ सूरतों के अंदर हुई है। बाजों ने तो असलन कहा मंतिक अरस्तू ही असलन फायदा नहीं रखती, असलन जरूरत ही नहीं है, बेफायदा है असलन ये। बाजों ने कहा कि नहीं, मंतिक अरस्तू दुरुस्त है, फायदामंद है, लेकिन जो अरस्तू ने दावा किया है उस दावे के मुताबिक नहीं है। मंतिक अरस्तू ने दावा किया हम यकीन की मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मंतिक अरस्तू के कवायद बयान बयानशुदा कवायद जो है वो यकीन तक नहीं पहुंचाते, लिहाजा अलग मंतिक की जरूरत है। बस उन्होंने फिर अलग मंतिक को इख्तिरा किया। यहां पर आकर फकत शेद मुतहरी ये बयान करते हैं, फ्रांसिस बेकन, डिकार्ट, इन्होंने मंतिक अरस्तू को बहुत ज्यादा नकद किया, इसको बातिल करार दिया, हत्ता कहा कि असल इसका कोई फायदा ही नहीं है। और फिर कहते हैं कि बल्कि 3 करन तक, 2 करन 200 साल तक मंतिक अरस्तू गर्ब की दुनिया से खत्म हो गई या कमरंग हो गई इन्हीं के इश्कालात की वजह से, फ्रांसिसी बेकन के, डिकार्ट और इन जैसे हेगल वगैरह इनके एतराजात की वजह से। लेकिन कहते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अब दोबारा अपना मकाम हासिल करना शुरू कर दिया, कि जब दिफा करना शुरू किया जो मंतिक अरस्तू के कायल थे। तो शेख मुतारी कहते हैं कि हम इसका जवाब और इनके इश्कालात को बाबे कयास में जिक्र करेंगे, क्योंकि ज्यादा असल मंतिक जो है वो बाबे कयास है, बाकी तो तकरीबन मुकदमात हैं, तारीफ हो गई, कजाया की अकसाम हो गई, वो सारी वो मुकदमा है, इसलिए कि हम बाबे कयास को समझ सकें। उसकी जो 4 शिक्लें बनाते हैं, फिर बुरहान का मरहला शुरू होता है, वो असल में मंतिक है। तो जिन्होंने मंतिक अरस्तुई के ऊपर इश्कालात किए हैं, उन्होंने बाबे कयास पर इश्कालात किए हैं। ये जो बाबे कयास के कवानीन हैं, ये कयास के कवानीन जो है वो दुरुस्त नहीं है, या इस किस्म की मुख्तलिफ जो है वो एतराजात किए हैं। तो शेख मुतहरीर कहते हैं कि हम इसको वहीं जवाब देंगे, तो हम भी इंशाल्लाह जब वहां पहुंचेंगे तो उसमें तफसीलन अर्ज होगा कि उनके क्या क्या एतराज थे, फिर उनको कैसे जवाब दिया जा सकता है, वो शेख मुतहरीर ने यहाँ पे बयान किया है इसमें। पर ये एक इस पैरे में चंद मतालिक ये वाले इसमें बयान होते। तारीफ इल्म मंतिक उसमें यही बयान करता है, नीचे अरबी में इन्होंने लिखा हुआ है कि सारी तकरीबन मंतिक जो है वो यही इसकी मिलती जुलती तारीफ करते हैं कि आलतुन कानूनीयतुन तासिम मुरातुहा अज़्ज़हना अनिल खताए फिल फिक्र, के मंतिक जो है वो एक ऐसा आला है कि जो कुल्ली है, कानून की हैसियत रखता है। अब यहां पर इन्होंने मिसाल दिया कानून की, कानून किसे कहते हैं, कवायद कुल्लिया को, और ये कानून मियार व मिकयास होता है। आप क्या करते हैं, एक चीज को जब मुकायसा करते हैं कि ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, तो एक मिकयास की जरूरत होती है। मसलन जैसे मिसाल दिए शेख मुतहरी ने मातन के अंदर कि अगर कोई मिस्री मकान बनाना चाहता है और दीवार खड़ी करनी है उसने, तो वो दीवार खड़ी करने के लिए, वो देखने के लिए कि आया ये दीवार सीधी खड़ी हो रही है या टेढ़ी है, तो एक पैमाने से इस्तेफादा करता है, एक मियार व मिकयास से इस्तेफादा करता है, जिसको शाकुल कहते हैं। कहते हैं कि उसको कानून कहते हैं, दुरुस्त है। तो कहते हैं कि ये जो इल्म मंतिक के कवायद को कानून कहा जा रहा है, ये आलतुन कानूनिया है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि मियार वाक़े होते हैं कवायद इल्म मंतिक के, आप मिकयास करार देते हैं और अपनी फिक्र को इसके साथ मुकायसा करते हैं कि अगर वो उन कवायद के मुताबिक हुई आपकी फिक्र, तो कहेंगे कि मेरा नतीजा भी ठीक है, अगर वो कवायद के मुताबिक ना हुई तो आप कहेंगे कि नतीजा दुरुस्त नहीं है। तो इस वजह से इसको कानून की ताबीर की है, आलतुन कानूनिया, कि ये कानून है। और फिर अगर इसको मुराआत की जाए, इसको सही तरीके से लागू किया जाए, तो ये इंसान को फिक्री खता से बचाती है। ये मतलब इन्होंने बयान किया। फायदा इल्म मंतिक कहते हैं इसी में वाजे हो जाता है कि इंसान ने चूंकि फिक्र करनी है और फिक्र के अंदर खता मुमकिन है, तो खता को कैसे रोके वो मंतिक उसको बताएगी कि कैसे रुकना है इसने आकर। तो शेख मुतहरी एक मतलब को यहां पर बयान करते हैं कि इसको बाद में देखते हैं फिर, ताकि दूसरे दर्स के साथ इसको मिला लेंगे, दूसरा दर्स भी थोड़ा सा दिक्कत तलब है, उसके बाद फिर मतालिब कुछ आसान है। वो ये कि फिक्र की फिर क्या तारीफ है, फिक्र को हम पहचाने तो फायदा इल्म मंतिक भी हमारे लिए जो है वो वाजे हो जाएगा। ये फिर थोड़ा तफसील तलब है इसमें, और दूसरा दर्स भी इसके साथ कल मिला के इंशाल्लाह ये हमारे कल 2 दर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर बातें कुछ आसान है, वो आपने भी पढ़ी हुई है, इसको तेजी से आगे बयान कर लेंगे।